नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के एपिसोड 20 में, दुर्योधन द ग्रे डॉट। दोस्तों, आज के हमारे किरदार बहुत ही फेमस हैं, क्योंकि अक्सर इन्हें महाभारत का सबसे मेन विलन माना गया है, या यूं कहिए कि इन्हें मेन रीजन माना गया है कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पीछे। अब टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूँ, बट उसमें एक पार्ट ये भी है जिसमें लिखा है द ग्रे डॉट। अब उसका मतलब ये है कि दुर्योधन का जो कैरेक्टर है उसे डायरेक्टली सही या गलत कहना जायज नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी या कम सुनी होंगी। उससे ये पता चलेगा कि दुर्योधन अगर बिल्कुल सही नहीं था तो वो एकदम गलत भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने दुर्योधन के नेगेटिव शेड्स के बारे में ही देखा है, चाहे टीवी हो चाहे कहानियाँ हो। तो इससे पहले कि हम कहानी में और आगे बढ़ें, मैं दुर्योधन के बारे में एक मोटा मोटी रफ स्केच बता देता हूँ कि वो कौन है और महाभारत में वो कैसे रिलेटेड हैं बाकी लोगों से। तो दुर्योधन के पिता हैं धृतराष्ट्र, जो अभी हस्तिनापुर के राजा हैं, और वो बचपन से ही अंधे हैं। दुर्योधन की माता जी जो हैं उनका नाम है गांधारी, जिन्होंने शादी के बाद अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी। दुर्योधन के और 99 भाई हैं, मतलब और 99 भाई हैं, और उनकी एक सिस्टर है। तो ये टोटल 100 भाई और एक सिस्टर है। तो ये तो था कि दुर्योधन कौन थे। अच्छा, दुर्योधन के जन्म की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा डिटेल्स आप मेरे एपिसोड 5 जो बर्थ ऑफ पांडवाज और कौरवाज के नाम पे है, आप वहाँ पूरा डिटेल में सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि दुर्योधन का जन्म असल में मांस के टुकड़े से हुआ था, जिसे घी से भरे एक घड़े में रखा गया था, और ये 2 साल के बाद उस मांस के टुकड़े से दुर्योधन का जन्म होता है। और इसी तरीके से उनके जो बाकी 99 भाई हैं उनका भी जन्म होता है। तो दुर्योधन इन 99 भाइयों के सबसे बड़े थे। तो कहते हैं कि जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था, उस दिन जितने भी आसपास के जंगली जानवर हैं वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, और पूरा माहौल ऐसा मनहूसियत वाला माहौल बन चुका था। तो ये सब देखते हुए राजमहल में जितने भी ऋषि मुनि थे, विदुर थे, सबने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये जो बेटा हुआ है ये अपशकुन लाएगा, तो इसको आप मार दो। लेकिन अभी चूँकि धृतराष्ट्र पिता थे और बहुत सालों के बाद उनको ये बेटा हुआ था, और वो भी ऋषि मुनि के आशीर्वाद से हुआ था, तो अपना पहला बेटा होने के प्यार को वो ऐसे भुला नहीं पाते हैं, इसीलिए वो सबकी बात काट देते हैं और वो दुर्योधन को वो जिंदा रखते हैं। अब आप लोग शायद जानते होंगे कि दुर्योधन का असल नाम सुयोधन था, और लोगों को लगता है कि चूंकि वो विलेन थे या फिर उनके कर्म अधर्मी वाले थे या बहुत नेगेटिव शेड वाले इंसान थे, इसलिए उनका नाम सुयोधन से दुर्योधन पड़ गया था। लेकिन असल रीज़न ये नहीं है। सुयोधन से दुर्योधन उन्होंने अपना नाम खुद ही चेंज किया था, क्योंकि सुयोधन का मतलब होता है ग्रेट वॉरियर, मतलब योद्धा, महारथी योद्धा, लेकिन दुर्योधन का मतलब होता है कि एक ऐसा योद्धा जिसे कि कोई हरा नहीं सके। तो इस ये सोच के उन्होंने अपना नाम सुयोधन से दुर्योधन किया था। तो ये तो कहानी थी दुर्योधन के नाम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन असल में काली नाम के एक असुर के अवतार हैं, और ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में उनके एक मित्र थे जिनका नाम था द्वापर, जो इस जन्म में शकुनी है। तो पिछले जन्म में काली असुर और द्वापर दोनों मिलके एक नल नाम के राजा को चौसर में हराते हैं बेईमानी से, और फिर उसको जंगल में भेज देते हैं 14 साल के लिए। ठीक उसी तरह इस जन्म में दुर्योधन और शकुनी मिलके पांडवों को चौसर में हरा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि दुर्योधन असल में एक काली असुर के अवतार हैं, जिसमें कलयुग के सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दुर्योधन ने बहुत सारे गलत काम किए या फिर अधर्म वाले काम किए, लेकिन इसके बावजूद दुर्योधन अपने वचन के बहुत ज़्यादा पक्के थे। मतलब अगर उन्होंने जवान दे दी है तो उसको वो ज़रूर निभाएंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन को पता चलता है कि पांडव उसी एरिया के आसपास किसी जंगल में आके ठहरे हुए हैं। तो दुर्योधन सोचते हैं कि क्यों ना पांडवों को और परेशान किया जाए, और इसी मकसद से वो पूरा अपना जितना सेटअप रहता है, जितना सेना, दासियां, अपनी वाइफ और सबको लेके वो जाते हैं और उस जंगल के पास वाले एरिया में अपना वहाँ पे जाके ठहरते हैं और सैनिक से बोलते हैं कि यहीं पे सारा सेटअप लगाओ और यहाँ पे एक से एक पकवान बनाओ। तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि जो भी पकवान बनेगा उसकी खुशबू आसपास के एरिया में जाएगी, पांडव लोग जो जंगल में रह रहे हैं उन तक पहुंचेगा, तो उनको और ज़्यादा बुरा फील होगा। मतलब दुर्योधन जो अभी राजा का लाइफ जी रहा है ये सब देख के पांडवों को और बुरा लगेगा। तो मेन इंटेंशन ये था। अब इधर जो सेना है वो पूरा तंबू वंबू लगा के पूरा सेटअप लगाना शुरू कर दिया वहाँ पे, और इसी प्रोसेस में वो लोग जाते हैं पास के किसी तालाब से पानी लाने के लिए। अब इस तालाब को असल में कुछ गंधर्व लोग गार्ड कर रहे थे। अब गंधर्व वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनको हम डेमीगॉड्स कहते हैं, जो पूरे देवता तो नहीं बट देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, और इनकी जोड़ी जो है हमेशा अप्सराओं के साथ में होती है। तो अब ये गंधर्व इस तालाब को गार्ड कर रहे होते हैं, जब दुर्योधन की सेना जाती है वहाँ से पानी लाने के लिए, तो उनको ये मार के भगा देते हैं। अभी लोग वापस आके दुर्योधन से कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग गए पानी लाने के लिए, वहाँ से भगा दिया। अब दुर्योधन इस बात से भड़क जाता है कि कौन है जो सेना को पानी लाने नहीं दे रहा है, तो वो जाते हैं और फिर जो भी वहाँ पे गंधर्व की सेना रहती है उस पर वो चढ़ाई कर देते हैं। अब इधर जो गंधर्व के राजा हैं चित्रसेन, उनको पता चलता है कि दुर्योधन अटैक कर दिया है, तो वो भी पहुंच जाते हैं और फिर दोनों में, चित्रसेन और दुर्योधन में, एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाता है। अब इधर से कर्ण भी दुर्योधन की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि वो लोग हाफ देवता हैं तो उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी, तो चित्रसेन लास्ट में क्या करते हैं, दुर्योधन को हरा देते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। कर्ण, उनकी वाइफ, सबको वो बंदी बना लेते हैं। इधर सेना देखती है कि भाई अब तो चित्रसेन ने बंदी बना लिया है दुर्योधन को, तो वो डर के मारे इधर उधर भागने लग जाती है। तो सेना के कुछ लोग जिन्हें पता था कि पांडव इसी जंगल में रुके हैं, वो लोग उनके शरण में जाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और उधर चित्रसेन ने बंदी बना लिया है। अब भीम जब इस बात को सुनता है तो वो तो बड़ा खुश होता है, वो कहता है यार अच्छा हुआ। लेकिन फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, जो भी है वो हमारा कज़न है और जो उसकी वाइफ है वो हमारे ख़ानदान की बहू है, तो बाहर का कोई भी आके इस तरह से हमारे ख़ानदान की बहुओं को बंदी नहीं बना सकता है, तो इसलिए तुम और अर्जुन जाओ और उसको वहाँ से छुड़ाओ। तो अर्जुन और भीम अपने बड़े भाई की बात सुन के जाते हैं चित्रसेन से लड़ाई करने के लिए, और फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इधर अर्जुन बहुत बड़े महारथी थे, उनको हराना बहुत मुश्किल था, तो वो जब एक से एक तीर चलाना शुरू कर देते हैं तो फिर चित्रसेन की जो सेना होती है वहाँ पे भी खलबली मच जाता है। तो लास्ट में जब चित्रसेन देखते हैं कि अच्छा अर्जुन आ चुके हैं लड़ाई के लिए रणभूमि में, तो वो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ और मुझे इंद्रदेव ने ही भेजा है, ये जितना भी प्लॉटिंग था वो इंद्रदेव का था, क्योंकि दुर्योधन ने गलत तरीके से तुम लोगों को चौसर में हराया है और इसके कारण तुम लोगों की ये दुर्दशा है। तो इसी बात के लिए इंद्रदेव दुर्योधन को पनिश करना चाह रहे थे, लेकिन इधर अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये मेरे कज़न हैं, तो आप प्लीज़ इनको रिहा कर दो, इनके साथ में बाकी जितने लोगों को आपने बंदी बनाया है आप सबको रिहा कर दो। तो चित्रसेन अर्जुन की बात मानते हैं और फिर वो कर्ण, दुर्योधन, उनकी वाइफ, उनकी दासियां, बाकी जो सेना, जिनको जिनको उन्होंने बंदी बनाया था सबको वो छोड़ देते हैं। अब दुर्योधन को अंदर से थोड़ा बुरा तो लग ही रहा था और ये थोड़ा ईगो के अगेंस्ट में भी लग रहा था कि अर्जुन ने आके मदद किया उनको, और ये बुरा भी इस बात का लग रहा था कि वो इन्हें ही चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और लास्ट में इन्हीं के कारण ये जिंदा बचते हैं। तो वो आके फिर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुमने मुझे बचाया, मेरी वाइफ को बचाया, मेरे दोस्तों को बचाया, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ था नहीं ऐसा कि उनसे मांगना चाहिए या फिर इसके बदले में कुछ लेना चाहिए, तो वो कुछ कहते नहीं हैं, कुछ मांगते नहीं हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब इस इंसिडेंट को हुए बहुत टाइम हो जाता है और अभी एक ऐसा टाइम आ गया है जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू हो चुकी है, पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई चल रहा है, एकदम घमासान लड़ाई चल रहा है, जहाँ पे पांडव लोग भारी पड़ रहे हैं कौरवों पे, और दुर्योधन वो इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो इसी फ्रस्ट्रेशन में रात में आके भीष्म पितामह से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उनसे कहता है कि आपके मन में पांडवों के लिए प्यार इतना ज्यादा है कि आप अपने फुल पोटेंशियल में आके आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी जितनी शक्ति है आप पूरी शक्ति नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपके मन में प्रेम है उनके लिए। अब भीष्म पितामह को ये बात बहुत बुरा लगता है और उनको इंसल्टिंग लगता है ज़्यादा, तो वो गुस्से में कहते हैं कि तुमने मेरे डेडिकेशन, जो मेरा प्यार है हस्तिनापुर के राजगद्दी के लिए, तुमने उस पे सवाल उठाया है, तो मैं उसको प्रूफ करने के लिए मैं कल के कल पांडवों की पूरी सेना को ख़त्म कर दूंगा, और पांडवों को मैं मारूंगा तो नहीं बट हाँ उन्हें बंदी बना के तुम्हारे सामने ज़रूर लेके आऊँगा। और ये बोलने के बाद भीष्म पितामह 5 सोने का तीर निकालते हैं और उन तीरों को हाथ में लेके वो कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं। अब दुर्योधन इनसे पूछते हैं कि इन 5 तीरों में ऐसा क्या अलग बात है जो अब तक आपने नहीं यूज़ किया है, या फिर इससे क्या हो जाएगा? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये वो 5 तीर है जिससे 5ों पांडव मर भी सकते हैं और उनको मैं बंदी भी बना सकता हूँ, और इसका कोई काट नहीं है। तो दुर्योधन इस बात से खुश हो जाता है कि अरे तो फिर ये आपने पहले दिन में ही क्यों नहीं यूज़ किया, मैं पहले दिन ही पांडवों को मार देता तो फिर युद्ध ख़त्म हो जाता। तो अब जब आपने ये तीर निकाल लिया है तो मैं कल इसको यूज़ करूँगा उनको मारने के लिए। और ये बोलते हुए दुर्योधन रियलाइज़ करते हैं कि अब उसने अपना इंटेंशन बता दिया है भीष्म पितामह को कि इन तीरों के साथ वो क्या करने वाले हैं। तो उनको लगता है कि भीष्म पितामह के मन में कहीं अभी भी पांडवों के लिए प्यार ना हो और रात भर में वो तीरों को कहीं कुछ कर ना दे, कहीं तोड़ ना दे, या फिर कहीं गुम ना कर दे, या फिर कुछ ऐसा उनका मन में ऐसा परिवर्तन नहीं आ जाना चाहिए कि भाई मैं तीर को अब यूज़ नहीं करूँगा। तो इसीलिए वो भीष्म पितामह से कहते हैं कि रात भर ये तीर आप मेरे पास रहने दीजिए, कल सुबह होते ही मैं ये तीर आपको वापस कर दूंगा रणभूमि में। और ऐसा बोल के वो तीर लेके वापस अपने टेंट में आ जाते हैं। अब ये जो तीर का जो कहानी है ये कृष्ण भगवान को पता है, अब वो तो भगवान है, तो वो अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन जाते हैं उनके टेंट में, बाकी पांडव भी लोग आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अर्जुन एक काम करो, तुम दुर्योधन के पास जाओ और उससे 5 तीर मांग के ले आओ जो वो भीष्म पितामह से लेके आया है। अब अर्जुन कहता है कि क्यों 5 तीर क्यों मांगना, मेरे पास पहले से ही इतने सारे एक से एक हथियार हैं जिससे मैं उन्हें आसानी से मात दे सकता हूँ, तो अभी वो 5 तीर क्यों मांगने जाऊँ। तब कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये वो 5 तीर है जिसका कोई काट नहीं है और इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, और एक बार में तुम खुद को तो बचा सकते हो लेकिन अपने भाइयों को नहीं बचा पाओगे, तो इसलिए तुम जाके वो 5ों तीर दुर्योधन से मांग लो और उसको उस वचन का याद दिलाना जो उसने तुम्हें दिया था गंधर्व से बचाने के लिए। उस टाइम पे उसने कहा था कि मांगो तुम्हें कुछ अगर चाहिए तो उसे अभी उसी बात का याद दिलाना और इसी बात के तहत वो तीर उनसे ले लेना। अब अर्जुन को मन तो था नहीं लेकिन फिर भी चूँकि श्री कृष्ण कह रहे थे तो इसलिए वो अनमने मन से जाते हैं और दुर्योधन को वो वचन का याद दिलाते हैं कि आपने मुझे वचन दिया था कि कुछ चाहिए तो मांगो, तो मुझे वो तीर दे दो जो अभी आप भीष्म पितामह से लेके आए हो। अब दुर्योधन समझ जाते हैं कि ये चाल कृष्ण के अलावा कोई और नहीं चल सकता है, और ये जानते हुए कि ये 5ों तीर कुरुक्षेत्र की लड़ाई का रिजल्ट को उल्टा कर सकता था, मतलब 5ों पांडव को बंदी बना सकता था या मार सकता था, अपने वचन को रखने के लिए सिर्फ, जो कि उन्होंने बहुत सालों पहले दिया था, वो 5ों तीर वो अर्जुन को दे देते हैं। तो ये तो एक इंसिडेंट है जहाँ पे कि पता चलता है कि दुर्योधन चाहे कोई सा भी इंसिडेंस हो अपने वचन को पूरा करने में हमेशा आगे रहते थे। अब एक ये भी बात है जो कहा गया है कि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, जबकि उस टाइम पे ऐसा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, सारथी का बेटा सारथी बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, मतलब पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड था कि आप यही रहोगे, आप चाहे आप में कैलिबर रहे आप कुछ और नहीं कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे दुर्योधन ही ऐसा थे जो इन सब के अगेंस्ट में जाके कर्ण को अपना दोस्त बनाया था और राजा बनाया, क्योंकि उस टाइम कर्ण को सब शूतपुत्र मान रहे थे। शूतपुत्र मतलब हो गया कि आप सारथी के बेटे हो, और अगर आप सारथी के बेटे हो तो आप ना तो राजकुमार के साथ ट्रेनिंग ले सकते हो, ना ही आप ऐसे कंपटीशन में भाग ले सकते हो जहाँ पे कि बाकी राजकुमार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब वो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं कर्ण, तो सब उसको इंसल्ट भी करता है कि तुम तो एक शूतपुत्र हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की या पार्टिसिपेट करने की या ऐसे बारे में सोचने की भी। तो उस टाइम पे दुर्योधन एक अकेले ऐसे इंसान होते हैं जो कर्ण के साथ खड़े होते हैं और उनको कहते हैं कि ठीक है, अगर इसको पार्टिसिपेट करने के लिए राजा बनना जरूरी है तो मैं इसे एक राज्य दान में देता हूँ और ये इसको वहां का राजा घोषित करता हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दुर्योधन ने देख लिया था कि कर्ण इतना कैपेबल है कि वो अर्जुन को टक्कर दे सकता है, इसलिए भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने कर्ण को सपोर्ट किया था। तो चाहे इंटेंशन जो भी रहा हो, उस टाइम का जो कास्टिज्म था उसके अगेंस्ट में दुर्योधन अकेले खड़ा होके कर्ण को सपोर्ट किया था। और कहते हैं कि बाद में भी कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उसकी मिसालें दिया करते थे। और कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन अपने 99 भाइयों के मरने पे उतना नहीं रोया जितना कि कर्ण के मरने पे। इनफैक्ट कर्ण के मरने के बाद दुर्योधन का लड़ाई से मन ही हट चुका था और वो ऐसा हो गया था कि ठीक है, अभी लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। तो ये तो एक ऐसा इंसिडेंट था कि ऐसे टाइम पे जब कास्टिज्म को बहुत स्ट्रांगली माना जाता था, दुर्योधन ज़रूरत के टाइम पे कर्ण के सपोर्ट में खड़े होते हैं और अगेंस्ट इस कास्टिज्म के बिलीफ में। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे श्राप के बारे में बताता हूँ जो दुर्योधन को मिला था और उसकी मौत उसी श्राप के कारण हुई थी। तो होता यूं है कि एक बार मैत्रेय मुनि वो हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर आने के बाद वो दुर्योधन से मिलते हैं और वो दुर्योधन से कहते हैं कि मैंने पांडवों को देखा है और उनके बारे में सुना भी है कि उन्होंने एक से एक बड़े दानव दैत्य सबको वो मार गिराया है और वो और अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं जंगल में रह के। तो तुम पांडवों के साथ लड़ाई ना करके जो भी है आपस में तुम उसको सेटल कर लो, नहीं तो इस लड़ाई से बहुत हानि होगी। तो मुनि जब ये बातें कर रहे थे, दुर्योधन उस टाइम पे अपने जांघ पे हाथ से वो थपथपाते हैं और अपने नाखून को जमीन में वो कुरेदते हैं। अब ये देख के मुनि को गुस्सा आ जाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे अपना जेस्चर देख के इंसल्ट कर रहे हो, जांग थपथपा रहे हो, नाखून से जमीन खोद रहे हो। तो मुनि गुस्से में आके उस टाइम पे दुर्योधन को श्राप देते हैं कि जिस तरीके से तुमने अपने जांग को थपथपा के मुझे इंसल्ट किया है, तुम्हारी मौत भी उसी जांग पे चोट के कारण ही होगी। और महाभारत की लड़ाई में जब लास्ट में भीम और दुर्योधन की लड़ाई होती है, उस टाइम पे भीम दुर्योधन के जांघ पे ही मारता है और जिससे उसकी मौत होती है। हालांकि वो अनफेयर था, लेकिन कृष्ण के इशारे पे वो भीम मारते हैं। अब जो भीम और दुर्योधन का जो लड़ाई होता है लास्ट में दोस्तों, जिसमें कि दुर्योधन की मौत होती है, उसमें से एक बात ये भी है कि दुर्योधन बहुत फेयर गेम में बिलीव रखते थे। अब कहते यूं है कि जब कर्ण की मौत हो जाती है और ये बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो ये जल समाधि ले लेते हैं, दुर्योधन जल समाधि ले लेते हैं और वो पानी में आके मेडिटेशन करने लग जाते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि वो पांडवों से डर के आके पानी में छिप जाते हैं, तो ओवरऑल कि वो पानी के अंदर हैं और पांडव उनको ढूंढते हुए वहाँ पे आते हैं और उनको फिर बोलते हैं कि बाहर आके लड़ाई करो। तो दुर्योधन उनसे कहते हैं कि मेरा अब लड़ाई में मन नहीं है, मैं तुम्हें हस्तिनापुर दे देता हूँ। तो युधिष्ठिर कहता है कि हस्तिनापुर तुम्हारा है ही नहीं देने के लिए, हम इसे लड़ाई करके ही लेंगे। तो तुम एक काम करो, हम पांचों पांडव में से किसी एक को चुनो और उसके साथ लड़ाई करो, और अगर तुम जीत गए तो सारा राजपाट तुम्हारा। अब इस बात को सुन के दुर्योधन आते हैं सामने और फिर वो पांचों पांडव में भीम को चुनते हैं, जबकि भीम उन सब में सबसे ज़्यादा बलशाली होता है। कहते हैं उसमें 10,000 हाथी का ताकत था, जबकि उस टाइम पे दुर्योधन किसी और को भी चुन सकते थे, जैसे नकुल हो गए, सहदेव हो गए या युधिष्ठिर हो गए, जो गदा में उतना ज़्यादा पारंगत नहीं थे। लेकिन ये चूंकि फेयर गेम में बिलीव रखते थे, इसीलिए ये अपने बराबर भीम को ये चैलेंज करते हैं लड़ाई के लिए। और ऑलमोस्ट लड़ाई में ये भीम को हरा ही दिए थे, लेकिन वो भीम फिर अनफेयर तरीके से इनके जांग पे मारते हैं और जिससे कि दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक कहानी और है, उस टाइम का है जब दुर्योधन एकदम मरने वाला होता है। अब दर्द के कारण दुर्योधन कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दायां हाथ में 3 उंगली उठा हुआ है और वो बार बार कुछ इशारा कर रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। और दुर्योधन के जितने भी लोग हैं आसपास में, वो लोग सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है, या फिर तो सब अपने अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, कोई कुछ इंटरप्रेट कर रहा है, कुछ कुछ इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन कोई सही मतलब नहीं बता पा रहा है कि दुर्योधन असल में कहना क्या चाह रहा है उन तीनों उंगलियों के सहारे। तो कृष्ण देखते हैं दुर्योधन को इस हाल में, और वो देखते हैं कि वो कुछ कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है दर्द के कारण, तो उनको बहुत बुरा फील होता है। तो वो जाते हैं दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहते हैं कि तुम्हारे बदले मैं इन तीन उंगलियों का जो अर्थ है वो समझाता हूँ बाकी लोगों को। असल में दुर्योधन उन तीन उंगली के सहारे वो तीन रीजंस बताना चाह रहा था जिसके कारण वो ये लड़ाई हारा था, और अगर वो उन बातों को फॉलो करता तो शायद वो ये लड़ाई जीत जाता, जिसमें कि पहला था कि हस्तिनापुर के चारों ओर किला नहीं बनाना। अगर वो एक किला बनाता हस्तिनापुर के चारों ओर तो पांडवों के लिए शायद इतना इजी नहीं होता कौरवों को हराना। एक तो ये था, पहला ये था। दूसरा था कि विदुर को अपने साइड से लड़ने के लिए ना मनाना, क्योंकि दुर्योधन लड़ाई के पहले एक बार विदुर को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं और विदुर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और ये कसम खा के कि वो किसी भी साइड से वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि विदुर के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नीति बनाते हैं। इधर से अगर कृष्ण थे तो उधर से अगर विदुर होते तो वो कृष्ण के हर एक प्लान का वो उधर से कट ज़रूर निकाल देते, तो इसलिए। तो दूसरा रीज़न ये था कि विदुर को उन्होंने कन्विंस नहीं किया अपने एंड से लड़ने के लिए। और तीसरा था गुरु द्रोणाचार्य के मरने के बाद अश्वत्थामा को कमांडर नहीं बनाना, क्योंकि अश्वत्थामा जो थे वो रुद्र के अवतार थे और गुस्से में उनको रोकना मुश्किल नहीं मतलब नामुमकिन ही था एक तरह से। तो गुरु द्रोणाचार्य को जब गलत तरीके से मार दिया जाता है उस टाइम पे अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है, और शायद उस टाइम पे अगर अश्वत्थामा को ये कमांडर बना देते तो वो अकेले ही पूरे पांडव की सेना को खत्म कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे उनको कमांड दिया नहीं तो वो उस तरीके से एक्ट भी नहीं कर पाए या फिर अपने गुस्से को यूज में नहीं ला पाए। तो ये तीसरा रीजन था उनके हारने का। तो ये तीन बातें थी जो दुर्योधन अपने दायां हाथ के तीन उंगली के सहारे कहना चाह रहे थे। अब ओवरऑल चाहे जो भी बातें हों, जैसे भी दुर्योधन रहे हों अपने लाइफ में, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे राजा भी थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, और लाइफ टाइम उन्होंने एक ही शादी की, जबकि उस टाइम पे ऐसा रिवाज था कि राजा कई रानियां रखते थे, यहाँ तक कि पांडवों ने भी दो तीन शादियां की, उसकी जगह दुर्योधन एक ही पार्टनर के साथ लाइफ टाइम रहे। और फिर दुर्योधन को सही गलत के तराजू में तोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका बचपन शकुनी के गाइडेंस में बीता था, जहाँ जबकि शकुनी बचपन से ही उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करते रहे थे पांडवों के अगेंस्ट में, और हमेशा चाहे जो भी नेगेटिव बातें हों, नेगेटिव थिंग्स हो, जितनी बातें थी वो शकुनी स्टार्टिंग से ही बचपन से ही उनके दिमाग में भरते आए थे, और शायद इसीलिए मैं दुर्योधन को एक ग्रे स्पॉट में देखता हूँ कि जो ना कि बहुत अच्छा है और ना कि बहुत बुरा। और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताऊँ कि दुर्योधन के नाम का इंडिया में मंदिर भी है, जो एक केरला में है और दूसरा उत्तराखंड में है, और कहते हैं कि जो यहाँ के ट्राइब्स हैं वो लोग कौरवों की तरफ से वो उन्होंने लड़ाई करी थी महाभारत की लड़ाई में। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों कुछ सुनाओ यार अब बाकी प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुकू FM पे भी अवेलेबल है, वहाँ आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ आप कमेंट्स भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब चैनल पे अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद करते रहें और इंसानियत को जगाए रखें। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विद अमित रवानी।